अध्याय 30 मिलाप वाला तंबू और उसमें होने वाली धर्म क्रियाएं। यह अध्याय निर्गमन 25 से 40, लैव्य व्यवस्था 4 और 16 पर आधारित है। जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के साथ था, तब उसे ये आदेश दिया गया, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं, और पवित्र मंडप के निर्माण के लिए संपूर्ण निर्देश दिए गए। अपने स्वधर्म त्याग के कारण इसराइलियों ने ईश्वरीय उपस्थिति की आशीष खो दी, और उस समय अपने मध्य परमेश्वर के लिए पवित्र स्थान का निर्माण असंभव कर दिया। लेकिन दोबारा से स्वर्ग की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के बाद वो महान अगुआ परमेश्वर की आज्ञा को क्रियान्वित करने आगे बढ़ा। पवित्र भवन के निर्माण के लिए चुने हुए व्यक्तियों को परमेश्वर द्वारा हुनर और ज्ञान से संपन्न किया गया। परमेश्वर ने स्वयं उसके माप और आकृति, प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री और उसमें रखी जाने वाली चल सामग्री, फर्नीचर से संबंधित विशेष निर्देशों सहित मूसा को उस भवन का रेखाचित्र दिया। हाथों से बनाए गए पवित्र स्थान को सच्चे पवित्र स्थान का नमूना और स्वर्ग में की वस्तुओं का स्वरूप होना था। इब्रानियों 9:24-23। स्वर्गीय मंदिर का एक लघुचित्र प्रतिरूप, जहां हमारे महान महायाजक मसीह को बलिदान के रूप में अपने प्राणों की भेंट चढ़ाने के बाद पापी के पक्ष में मध्यस्थता करनी थी। परमेश्वर ने पर्वत पर मूसा के सामने स्वर्गीय पवित्र स्थान का दृश्य प्रस्तुत किया और उसे आज्ञा दी कि प्रत्येक वस्तु उस नमूने के आधार पर बनाई जाए। यह सारे निर्देश मूसा द्वारा सावधानी से अंकित किए गए, जिसने उन्हें लोगों के अगुओं तक पहुंचाए। पवित्र स्थान के निर्माण के लिए अत्यधिक और बड़ी लागत वाली तैयारियां करना आवश्यक था। अधिक मात्रा में बहुमूल्य सामग्री की आवश्यकता थी, लेकिन परमेश्वर ने केवल स्वैच्छिक भेंटे स्वीकार की। मूसा ने कलीसिया के सम्मुख पवित्र आदेश को दोहराया, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सभों से मेरी भेंट लेना। सर्वोच्च के लिए निवास स्थान तैयार करने में परमेश्वर के प्रति भक्ति और त्याग की भावना प्रथम आवश्यकता थी। सभी लोगों ने एक चित्तता के साथ उत्तर दिया, और जितनों के हृदय ने उन्हें उत्साहित किया और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, वे कलीसिया के पवित्र मंडप के कार्य के लिए, उसकी सेवा के लिए और पवित्र वस्त्रों के लिए यहोवा की भेंट लाए। स्त्री और पुरुष दोनों ही, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब कंगन, कानों की बालियां, अंगूठियां, मणिबंध आदि सोने के गहने लाए, और प्रत्येक मनुष्य जो भेंट लाया उसने परमेश्वर के लिए सोने की भेंट अर्पण की। और जिस भी मनुष्य के पास नीले, बैंगनी या लाल रंग का उत्तम सन का कपड़ा, बकरी के बाल या लाल रंग में रंगी हुई मेढ़ों की खालें, जलव्याघ्र की खालें थी, वह उन्हें लेकर आया। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट देने वाले थे, वे यहोवा के लिए वैसी भेंट लेकर आए। और जिसके पास विधि के किसी भी कार्य के लिए बबूल की लकड़ी थी, वह उसे लेकर आया। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत काता करती थीं, और वे अपने द्वारा काता हुआ नीला, बैंगनी व लाल रंग का उत्तम सन का वस्त्र लेकर आईं। जितनी स्त्रियों के मन में बुद्धि का प्रकाश जागृत हुआ, उन्होंने बकरी के बाल बुने। और प्रधान लोग एपोद और कवच में जड़ने के लिए सुलेमानी पत्थर और मणियां और उजियाला देने और अभिषेक करने और मनभावनी सुगंध के लिए सुगंध द्रव्य और तेल लेकर आए। निर्गमन 35:23-28। जब पवित्र स्थान के निर्माण का कार्य प्रगति पर था, वृद्ध एवं तरुण पुरुष, स्त्रियां व बालक अपनी भेंट लाते रहे, जब तक उस काम के प्रभारियों ने पाया कि सामग्री पर्याप्त थी और आवश्यकता से अधिक थी। और मूसा ने पूरे डेरे में घोषणा करवाई, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए भेंट न लाए। इस प्रकार लोगों को और भेंट लाने से रोका गया। इसराइलियों की बड़बड़ाहट और उनके पापों के फलस्वरूप परमेश्वर की दंडाज्ञा निष्पादन चेतावनी के तौर पर आगे की पीढ़ियों के लिए उल्लिखित की गई, और उनकी भक्ति उनका उत्साह और उदारता अपनाने योग्य उदाहरण है। जो भी परमेश्वर की आराधना से प्रेम करते हैं और उसकी पवित्र उपस्थिति के आशीर्वाद को महत्व देते हैं, वे उससे भेंट करने के स्थान को तैयार करने में त्याग की ऐसी ही भावना को प्रकट करेंगे। वे अपनी निधि में से परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए सबसे उत्तम भाग लाने के इच्छुक होंगे। परमेश्वर के लिए बनाए गए भवन को कर्ज में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार उसका अनादर होगा। इस कार्य को संपन्न करने के लिए पर्याप्त धनराशि उदारता से दी जानी चाहिए, ताकि श्रमिक भी पवित्र स्थान के निर्माताओं की तरह कह सकें, अब और भेंटे न लाओ। पवित्र स्थान का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि उसे विघटित किया जा सकता था और इजरायली उसे अपनी सब यात्राओं में ले जा सकते थे। इस कारण वह आकार में छोटा था। वह लंबाई में 55 फीट और चौड़ाई और ऊंचाई में 18 फीट से अधिक नहीं था, लेकिन फिर भी वह एक भव्य भवन था जो लकड़ी भवन और उसकी साज सज्जा के लिए प्रयोग में लाई गई थी। वह बबूल की लकड़ी थी जो सिने में पाई जाने वाली अन्य प्रकार की लकड़ी से भिन्न थी, क्योंकि वह सड़ती नहीं थी। उसकी दीवारें खड़े तख्त थे जिन्हें चांदी के आधार में टिकाया गया था और उन्हें स्तंभों और जोड़ने वाली छड़ों से स्थिर किया गया था। इन सभी को सोने से मढ़ा गया जिससे कि भवन सोने से बना प्रतीत होता था। पवित्र स्थान की छत पर्दे के 4 जोड़ों से बनी थी और सबसे अंदर वाले नीले, बैंगनी और लाल पर्दों पर कुशल कढ़ाई से करूब बने थे। अन्य 3 पर्दे कमशः बकरी के बाल, लाल रंग में रंगी मेढ़े की खाल और जल व्याघ्र की खाल से बने थे, जिन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया गया था कि वे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें। भवन को सोने से मढ़े हुए स्तंभों से लटकाए हुए एक बहुमूल्य और सुंदर पर्दे से 2 कक्षों में विभाजित किया गया था, और वैसा ही पर्दा पहले कक्ष के द्वार को ढांकता था। ये भी भीतर के पर्दों की तरह जिनसे छत बनी थी नीले, बैंगनी और लाल रंग के थे व सुव्यवस्थित थे। इन पर सोने और चांदी के धागों की कढ़ाई से करूब बने हुए थे जो उस स्वर्गदूत समूह का प्रतीक थे जो स्वर्गीय पवित्र स्थान के कार्य से जुड़े हुए थे और जो पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों के लिए सहायक हैं। पवित्र स्थान के चारों ओर खुला आंगन था जिसके चारों ओर के स्तंभों से लटकते हुए उत्तम सन के वस्त्र के पर्दे या आवरण था। इस प्रांगण का प्रवेश द्वार पूर्वी सिरे पर था। इस पर सुंदर कढ़ाई वाले व बहुमूल्य कपड़े के पर्दे टंगे हुए थे जो पवित्र स्थान के पर्दों से निम्न थे। प्रांगण के पर्दे मंडप की दीवारों की ऊंचाई से आधे थे, इसलिए भवन को लोग बाहर से आसानी से देख सकते थे। प्रांगण में प्रवेश द्वार के बिल्कुल निकट होम बलि की पीतल की वेदी थी। इस वेदी पर परमेश्वर के लिए चढ़ाए गए बलिदान अग्नि से भस्म हो जाते थे और वेदी के चारों सींगों पर पश्चाताप का लहू छिड़का जाता था। पवित्र मंडप के द्वार और वेदी के बीच में पीतल का पात्र था जो इजरायली स्त्रियों के दर्पणों की स्वैच्छिक भेंट से बनाए गए थे। इस पात्र में याजक अपने हाथ और पैर धोते थे जब भी वे पवित्र कक्ष में प्रवेश करते या परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाने वेदी के पास आते थे। पहले कक्ष या पवित्र स्थान में विशेष रोटी की मेज, दीपाधार और धूप वेदी रखे जाते थे। विशेष रोटी की मेज उत्तर की ओर होती थी। अपनी अलंकारिक सतह के साथ वह सोने से मढ़ी हुई थी। इस मेज पर याजक प्रत्येक सबत को 12 रोटियों के 2 ढेर बनाकर उन पर लोबान छिड़क कर रखते थे। हटाए जाने पर इन रोटियों को पवित्र मानकर याजकों द्वारा खाया जाता था। दक्षिण की ओर 7 दीपों सहित 7 शाखाओं वाला दीपाधार था। उसकी शाखाएं सोसन के समान फूलों की उत्कृष्ट कृतियों से सुसज्जित थीं और पूरा दीपाधार खरे सोने से बना हुआ था। पवित्र मंडप में खिड़कियां नहीं थीं, इस कारण दीपकों को एक साथ बुझने नहीं दिया जाता था। वे रात दिन अपना प्रकाश बिखेरते थे। सबसे पवित्र व परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र स्थानों को अलग करने वाले पर्दे के बिल्कुल सामने धूप की स्वर्णिम वेदी थी। इस वेदी पर याजक को सुबह शाम लोबान सुलगाना होता था। उसके सींगों पर पाप की भेंट का लहू लगाया जाता था और पश्चाताप के दिन उस पर लहू छिड़का जाता था। इस वेदी पर अग्नि को परमेश्वर स्वयं प्रज्वलित करता था और वेदी को पवित्रता से संजोए रखा जाता था। रात दिन लोबान की पवित्र सुगंध कक्ष के अंदर, बाहर और चारों ओर दूर तक फैल जाती थी। भीतरी पर्दे के परे पवित्रों का पवित्र था, जहां मध्यस्थता और प्रायश्चित की प्रतीकात्मक विधि केंद्रित थी और जो पृथ्वी और आकाश को जोड़ने वाली कड़ी थी। इस कक्ष में एक संदूक था जो बबूल की लकड़ी से बना था और अंदर से और बाहर से सोने से मढ़ा हुआ था और उसके ऊपर सोने की बाड़ थी। यह संग्रह स्थान था उन पत्थर की पटियाओं के लिए जिन पर परमेश्वर ने स्वयं 10 आज्ञाएं लिखी थीं। इस कारण इसे परमेश्वर के साक्षी पत्र का संदूक या वाचा का संदूक कहा जाता था, क्योंकि 10 आज्ञाएं इज़राइल और परमेश्वर के बीच बांधी गई वाचा का आधार थी। पवित्र संदूक का ढक्कन प्रायश्चित का ढक्कन कहलाता था। इसे खरे सोने के एकल खंड से बनाया जाता था और इसके दोनों सिरों पर सोने के करूब खड़े किए जाते थे। प्रत्येक स्वर्गदूत का एक पंख ऊपर की ओर फैला हुआ होता था और दूसरा आदर और दीनता के प्रतीक जैसे शरीर पर लिपटा होता था। करूबों का एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े होना और आदर के साथ नीची दृष्टि किए संदूक को देखना उस श्रद्धा का जो स्वर्गीय समूह परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति रखते हैं और उद्धार की योजना में उनकी रुचि का प्रतीक था। प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति थी और वह करूबों के बीच में से वार्तालाप द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करता था। कभी कभी महायाजक के पास ईश्वरीय संदेश बादल में से आवाज के द्वारा पहुंचाया जाता था। कभी कभी दाहिनी ओर खड़े स्वर्गदूत पर प्रकाश होता जो स्वीकृति का चिन्ह था, या बाएं तरफ के स्वर्गदूत पर बादल या एक परछाई के पड़ने से अस्वीकृति प्रकट होती थी। संदूक में प्रतिष्ठापित परमेश्वर की व्यवस्था धार्मिकता और दंडाज्ञा का श्रेष्ठ नियम था। व्यवस्था आज्ञा के उल्लंघन करने वालों को मृत्यु का पात्र ठहराती थी, लेकिन इससे श्रेष्ठ प्रायश्चित का ढक्कन था जिस पर परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होती थी और जहां से प्रायश्चित के आधार पर प्रायश्चित करने वाले अपराधी को क्षमा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार पवित्र स्थान की विधि के द्वारा हमारे उद्धार के लिए मसीह के कार्य को दर्शाया गया है। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, धर्म और मेल ने एक दूसरे को चूम लिया है। भजन संहिता 84:10। पवित्र स्थान के भीतर प्रस्तुत किए गए दृश्य की महिमा का किसी भी भाषा द्वारा वर्णन करना असंभव है। सोने की दीवटों के प्रकाश को प्रतिबिंबित करती सोने से मढ़ी दीवारें, चमकीले स्वर्गदूतों वाले शानदार बूटेदार पर्दों के उत्कृष्ट रंग, वह मेज, धूप की स्वर्णिम वेदी, दूसरे पर्दे के पीछे पवित्र करूप सहित पवित्र संदूक और उनके ऊपर यहोवा की उपस्थिति का प्रकट प्रदर्शन, वह पवित्र महिमा, ये सब मनुष्य के उद्धार के कार्य के महत्वपूर्ण केंद्र, स्वर्ग में परमेश्वर के मंदिर की महिमा की एक मध्यम सी झलक है।
पवित्र मंडप के निर्माण में लगभग 6 महीने का समय लग गया। उसके संपन्न होने पर मूसा ने निर्माताओं के कार्य का निरीक्षण किया और उसकी तुलना उस नमूने के साथ की जो उसे पहाड़ पर दिखाया गया था और उन निर्देशों के साथ ही जो परमेश्वर ने उसे दिए थे। जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उन्होंने उसी के अनुसार किया और मूसा ने उन्हें धन्य ठहराया। उत्सुकतापूर्ण अभिरुचि के साथ इज़राइली जनसाधारण पवित्र भवन को देखने के लिए एकत्रित हुए। जब वे श्रद्धायुक्त संतोष के साथ उस दृश्य का चिंतन कर रहे थे, बादल का स्तंभ पवित्र स्थान के ऊपर गया और नीचे आते हुए उसने भवन को अपने में लपेट लिया। यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। पवित्र तेजस्विता के प्रकटन के कारण कुछ समय के लिए मूसा भी प्रवेश नहीं कर सकता। भावुक होकर लोग उस चिन्ह को देखते रहे जो इस बात का प्रमाण था कि उनके हाथों की संरचना स्वीकार कर ली गई थी। उच्च स्वर में कोई अभिव्यक्ति नहीं की गई, वरन सभी लोगों पर एक संस्कारपूर्ण श्रद्धायुक्त भय उतर आया। लेकिन उनके हृदयों की प्रसन्नता खुशी के आंसुओं में बह निकली और वे धन्यवादिता के सत्य वचन धीमी आवाज में फुसफुसाने लगे कि परमेश्वर उनके साथ वास करने को तैयार हो गया था। पवित्र निर्देश के अनुसार मिलाप वाले तंबू की विधि के लिए लेवी के घराने को अलग किया गया। सबसे प्रारंभिक समय में प्रत्येक मनुष्य अपने घराने का याजक होता था। अब्राहम के समय में याजकता ज्येष्ठ पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता था। अब समस्त इज़राइल के पहलौठों के स्थान पर परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू की विधि के लिए लेवी के घराने को स्वीकार किया। इस सांकेतिक सम्मान से उसने उसकी स्वामी भक्ति को स्वीकार करने का प्रमाण दिया
जो उन्होंने उसकी विधि का पालन करने और उसकी दंडाज्ञा को क्रियान्वित करने में तब दर्शाया जब इज़राइल सोने के बछड़े के आगे दंडवत करके धर्म त्याग कर रहा था। लेकिन पुरोहिती हारून के परिवार तक ही सीमित थी। परमेश्वर के सामने पुरोहिती करने की अनुमति केवल हारून के पुत्रों को थी। अतिरिक्त घराने के सदस्यों को पवित्र मंडप और उसकी साज सज्जा का प्रभार सौंपा गया। इसके अलावा उन्हें याजकों की सेवा में रहना था, लेकिन उन्हें बलि चढ़ाने, लोबान सुलगाने या पवित्र वस्तुओं को बिना आवरण के देखने की अनुमति नहीं थी। याजकों के कार्यभार के अनुसार उनके लिए एक विशेष पहनावा नियुक्त किया गया। मूसा को पवित्र निर्देश दिया गया, तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। सामान्य याजक का चोगा सन के सफेद कपड़े से बनाया जाता था, जिसमें जोड़ नहीं होता था। यह चोगा पैरों तक लंबा होता था और इसे लाल, बैंगनी व नीले रंग के बूटेदार श्वेत सन के कपड़े से बने कमरबंध से कमर पर बांधा जाता था। बाहरी वस्त्र के लिए सन के कपड़े की पगड़ी बनाई जाती थी। प्रज्वलित झाड़ी के पास मूसा को चप्पल उतारने को कहा गया, क्योंकि जिस स्थान पर वह खड़ा था वह पवित्र था। इसी प्रकार याजकों को मिलाप वाले तंबू में जूतों सहित जाने की अनुमति नहीं थी। जूतों से चिपके हुए धूल के कण पवित्र स्थान को अशुद्ध कर देते। मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करने से पहले उन्हें अपने जूते प्रांगण में छोड़ने होते थे, और होम बलि की वेदी पर या पवित्र मंडप में अनुष्ठान करने से पूर्व हाथ और पैर धोने होते थे। इस प्रकार लगातार यह शिक्षा दी जाती थी कि जो भी परमेश्वर की उपस्थिति के निकट आता है उससे सारी अशुद्धता दूर कर देनी चाहिए। महायाजक के वस्त्र उसके उच्च पद के उपयुक्त बहुमूल्य सामग्री से बने होते थे और उन पर सुंदर कढ़ाई की गई होती थी। सामान्य बिना जोड़ वाला नीला चोगा भी धारण करता था। उसके नीचे वाला घेरा सोने की घटियों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार से विभूषित था। एपोद के ऊपर स्वर्णिम, नीला, बैंगनी और लाल और श्वेत रंग का छोटा वस्त्र था। यह भी उन्हीं रंगों के कमरबंद से बांधा जाता था। एपोद की बाहें नहीं होती थीं और उसके कांधे वाले भाग में इज़राइल के 12 घरानों के नाम धारण किए हुए 2 सुलेमानी पत्थर जड़े हुए थे। एपोद के ऊपर कवच या सीनाबंद था, जो याजकीय वस्त्रों में सबसे पवित्र था। ये उसी सामग्री से बना था जिससे एपोद बना था। वो आकार में 9 इंच का वर्ग था और इसे कान्हों पर लगे सुनहरे छल्लों से बंधी नीली बटी हुई डोरी से लटकाया जाता था। उसकी बाहरी सीमा पर कई प्रकार के बहुमूल्य रत्न जड़े थे, जैसे परमेश्वर के नगर की 12 नींवों में जड़े गए थे। सीमा के भीतर 4 पंक्तियों में सोने में 12 मणियां जड़ित थीं और इन पर गोत्रों के नाम खुदे हुए थे, जैसे कि कंधे वाले भाग में जड़े हुए थे। प्रभु का निर्देश था, जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करें तब तब वो न्याय के कवच पर अपने हृदय के ऊपर इज़राइलियों के नामों को लगाए रखे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। निर्गमन 28:29। इसी प्रकार मसीही, वो महान महायाजक, पापी के पक्ष में पिता के सम्मुख मध्यस्थता करते हुए अपने हृदय पर प्रत्येक पश्चतापी विश्वासी प्राणी का नाम धारण किए रहता है। भजन संहिता 40:17 में लिखा है, मैं तो दीन और दरिद्र हूं तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। कवच के दाएं और बाईं तरफ 2 बड़ी मणियां थीं जिनकी चमक अधिक थी। इन्हें उरीम और तुम्मीन कहा जाता था। उनके माध्यम से महायाजक द्वारा परमेश्वर की इच्छा ज्ञात होती थी। जब परमेश्वर के सम्मुख निर्णय के लिए विवाद के विषय लाए जाते थे, बाएं तरफ की बहुमूल्य मणि के चारों ओर प्रकाश का तेजोमंडल ईश्वरीय स्वीकृति या सहमति का प्रतीक होता था, जबकि दाहिनी ओर के पत्थर पर बादल की परछाई का पड़ना अस्वीकृति या खंडन का प्रमाण माना जाता था। महायाजक की टोपी एक श्वेत सन के कपड़े की पगड़ी थी, जिसके साथ एक सोने की पट्टी, जिस पर यहोवा के लिए पवित्र नामक उपाधि खोदी हुई थी, और वो एक नीले फीते से टोपी के साथ संलग्न थी। याजकों के वस्त्र और व्यवहार से संबंधित सब कुछ ऐसा होता था कि देखने वाला परमेश्वर की पवित्रता के आभास से, उसकी आराधना की पवित्रता से और उसकी उपस्थिति में आने वालों से अपेक्षित पवित्रता से प्रभावित हो जाए। केवल मिलाप वाला तंबू ही नहीं, याजकों द्वारा की गई सेवा उपासना स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप और उदाहरण के अनुसार होनी थी। इब्रानियों 8:5। इस प्रकार ये अत्यंत महत्वपूर्ण थी और प्रभु ने मूसा के द्वारा इस प्रतीकात्मक आराधना के प्रत्येक बात से संबंधित सबसे पुख्ता और सुस्पष्ट निर्देश दिया। मिलाप वाले तंबू भी परिचर्या के दो भाग थे, एक दैनिक और एक वार्षिक आराधना। दैकिन आराधना पवित्र स्थान और पवित्र मंडप के प्रांगण में होम बलि की वेदी पर की जाती थी। मिलाप वाले तंबू के भीतरी कक्ष को महायाजक के सिवाय कोई भी नश्वर मनुष्य नहीं देख सकता था। वर्ष में केवल एक बार महायाजक वहां जा सकता था और वो भी अधिक विस्तृत और विधिवत तैयारियों के साथ ही संभव था। वो कंपकंपाते हुए परमेश्वर के सम्मुख भीतर जाता था और लोग आदरपूर्वक चुप्पी साधे उसके लौटने की प्रतीक्षा करते थे और हृदय से ईश्वर के आशीर्वाद की प्रार्थना किया करते थे। प्रायश्चित के ढक्कन के आगे महायाजक इज़राइल के लिए पश्चाताप करता और महिमा के बादल में परमेश्वर उससे भेंट करता था। उसका यहां और दिनों की तुलना में अधिक देर तक रहना लोगों को भयभीत कर देता था कि कहीं उनके या उसके पापों के कारण परमेश्वर की महिमा द्वारा वो मारा तो नहीं गया। दैनिक आराधना भोर और गोधुली के समय होम बलि चढ़ाकर सोने से मढ़ी वेदी पर धूप की भेंट और व्यक्तिगत पापों के लिए विशेष भेंटें चढ़ाकर की जाती थीं, और विश्राम दिन पर नए चांद के दिन और विशेष पर्वों पर भी भेंटें चढ़ाई जाती थीं। प्रतिदिन भोर और गोधुली के समय वेदी पर एक साल का मेमना उचित मास की भेंट के रूप में अग्नि में जलाया जाता था, और ये यहोवा के लोगों के नित्य समर्पण और मसीह के पश्चतापी लहू पर लगातार निर्भर रहने का प्रतीक था। परमेश्वर का स्पष्ट निर्देश था कि मिलाप वाले तंबू की आराधना में लाई जाने वाली भेंट निर्दोष, निर्गमन 12:5 होनी चाहिए। बलिदान के रूप में लाए जाने वाले प्रत्येक पशु का याजकों द्वारा निरीक्षण किया जाता था, और यदि उनमें कोई दोष पाया जाता था तो भेंट स्वीकार नहीं की जाती थी। केवल एक न निर्दोष भेंट ही उसकी संपूर्ण पवित्रता का प्रतीक हो सकती थी, जिसे स्वयं को एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने 10:1:19 के तौर पर बलिदान करना था। पौलुस इन बलिदानों की ओर उदाहरण के तौर पर संकेत करता है कि मसीह के अनुयायियों को ऐसा ही बनना है। रोमियो 12:14 में वो कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी यथोचित सेवा है। हमें स्वयं को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करना है और हमें हमारी भेंट को जहां तक संभव है दोषहीन बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि हम उसे अपनी ओर से सर्वोत्तम देने में सक्षम हैं लेकिन परमेश्वर को उससे कम दें तो वो प्रसन्न नहीं होता। जो उससे हृदय से प्रेम करते हैं वे उसे अपनी जीवन की सर्वोत्तम सेवाएं देने को इच्छुक होंगे, और वे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की अपनी क्षमता को बढ़ाने वाले नियमों के साथ अपने अस्तित्व के संपूर्ण सामर्थ्य का सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। दैनिक परिचर्या की अन्य विधियों की तुलना में धूप की भेंट चढ़ाने में याजक परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक प्रत्यक्ष रूप में लाया जाता था। मिलाप वाले तंबू का भीतरी पर्दा छत तक नहीं पहुंचता था, इसलिए प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर प्रदर्शित परमेश्वर की महिमा प्रथम कक्ष से आंशिक रूप से दिखाई देती थी। जब याजक परमेश्वर के सम्मुख धूप की भेंट चढ़ाता था वो संदूक की ओर देखता था, और जब धूप का धुआं उठता था परमेश्वर का तेज प्रायश्चित के ढक्कन पर उतरता था और सबसे पवित्र स्थान में पूरी तरह फैल जाता था, और प्रायः इस तरह दोनों कक्षों को भर देता था कि याजक पवित्र मंडप के द्वार के पास जाने को विवश हो जाता था। जिस प्रकार उस प्रतीकात्मक विधि में याजक विश्वास में प्रायश्चित के ढक्कन की ओर देखता था जो अदृश्य हो जाता था, वैसे ही लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी प्रार्थनाएं अपने महायाजक मसीह को संबोधित करें, उस अदृश्य मसीह को जो उनके पक्ष में स्वर्ग के पवित्र स्थान में उनकी मध्यस्थता कर रहा है। इज़राइल की प्रार्थनाओं के साथ उठता हुआ धुआं मसीह की मध्यस्थता और विशेषता का, उसकी संपूर्ण पवित्रता का प्रतीक है, और केवल यही पापी मनुष्यों की आराधना को परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य बना सकता है। सबसे पवित्र स्थान के पर्दे के सामने अविरत प्रायश्चित की वेदी थी, जिसके माध्यम से पापी यहोवा के पास पहुंच सकता था और जिसके द्वारा पश्चतापी विश्वासी मनुष्य को दया और उद्धार प्रदान किया जा सकता था। उस महान मध्यस्थ के सांकेतिक प्रतीक लहू और धूप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाना होता था।
धूप की विधि के समय जब याजक भोर और संध्या को पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, तो बाहर प्रांगण में वेदी पर चढ़ाने वाली भेंट के रूप में दैनिक बलिदान बलि का पशु तैयार रहता था। पवित्र मंडप पर एकत्रित उपासकों के लिए यह समय बड़ा रुचिकर होता था। याजक की परिचर्या के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने से पहले उन्हें अपने पापों को अंगीकार करना और अपने हृदय को टटोलना होता था। वे एकचित होकर अपने मुख पवित्र स्थान की ओर करके चुपचाप प्रार्थना करते थे। इस प्रकार उनके निवेदन धूप के धुएं के साथ ऊपर उठ जाते थे। पश्चतापी बलिदान में आदि रूपित प्रतिश्रुत उद्धारकर्ता के सामर्थ्य पर विश्वास की पकड़ हो जाती थी। भोर व संध्या के बलिदान के नियुक्त समय को पवित्र माना जाता था और इसे समस्त यहूदी राष्ट्र में आराधना का निर्धारित समय ठहरा दिया गया। आने वाले समय में जब यहूदी दूर देशों में बंधकों के रूप में तितर बितर हो गए, तब भी नियुक्त समय पर अपने मुख यरूशलेम की दिशा में मोड़कर वे इज़राइल के परमेश्वर को अपने निवेदन अर्पित करते थे। इस रीति में मसीही लोगों के पास भोर व संध्या की आराधना का उदाहरण है। परमेश्वर भक्ति भाव से रहित धर्म क्रिया की औपचारिकता का खंडन करता है, लेकिन जो लोग अपने द्वारा किए गए अपराधों की क्षमा प्राप्ति के लिए और आवश्यक आशीषों का अनुरोध करने के लिए सुबह शाम उसे दंडवत करते हैं और उससे प्रेम करते हैं, उन्हें देखकर वह आनंदित होता है। सर्वकालिक भेंट के रूप में भेंट की रोटी परमेश्वर के सम्मुख हमेशा रहती थी, वह भी दैनिक बलिदान का हिस्सा थी। इसे भेंट की रोटी या उपस्थिति की रोटी कहा जाता था, क्योंकि यह परमेश्वर के सामने रखी होती थी। यह सांसारिक और आध्यात्मिक पोषण के लिए मनुष्य की परमेश्वर पर निर्भरता की आभारोक्ति थी और इस बात की पुष्टि करती थी कि यह पोषण केवल मसीह की मध्यस्थता से प्राप्त होता था। परमेश्वर ने इज़राइल को निर्जन प्रदेश में स्वर्ग की रोटी खाने को दी थी और वे अभी भी सांसारिक और आध्यात्मिक पोषण के लिए उसकी बहुतायत पर निर्भर थे। भेंट की रोटी और मन्ना दोनों ही मसीह की और संकेत करते थे, जो जीवन की रोटी है और जो हमारे लिए हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। यूहन्ना 6:48-51 के अनुसार उसने स्वयं कहा, जीवन की रोटी मैं ही हूं जो स्वर्ग से उतरी। रोटी पर लोबान रखा जाता था। जब प्रत्येक सबत को रोटी हटाकर उसके स्थान पर ताजी रोटी को रखा जाता था, तो परमेश्वर के सम्मुख स्मारक के तौर पर लोबान को वेदी पर जला दिया जाता था। दैनिक परिचर्या का सबसे महत्वपूर्ण भाग वह विधि थी जो व्यक्ति विशेष के लिए की जाती थी। पश्चतापी पापी अपनी भेंट पवित्र मंडप के द्वार तक लाता था और अपना हाथ बलि के पशु पर रखकर अपने अपराधों को स्वीकार करता था, और इस प्रकार प्रकट रूप से वह अपने अपराध को निर्दोष बलि के पशु पर स्थानांतरित कर देता था। फिर उसी के हाथों द्वारा उस पशु का वध किया जाता था और पशु के खून को याजक पवित्र स्थान पर ले जाकर उस पर्दे के सामने छिड़कता था, जिसके पीछे उस वाचा का संदूक रखा होता था जिसका उसने उल्लंघन किया। इस विधि के द्वारा लहू के माध्यम से प्रकट रूप से पाप मिलाप वाले तंबू में स्थानांतरित हो जाता था। कुछ मामलों में लहू को पवित्र स्थान में नहीं ले जाया जाता था, लेकिन फिर उस पशु के मांस को याजक द्वारा खाना होता था, जैसे मूसा ने हारून के पुत्रों को यह कहते हुए निर्देश दिया, तुम मंडली का भार अपने पर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो। लेव्य व्यवस्था 10:17। दोनों ही विधियां एक समान पाप को पश्चतापी से मिलाप वाले तंबू में स्थानांतरित करती थी। पूरे साल प्रतिदिन यह क्रिया चलती रहती थी। इज़राइल के पापों के पवित्र स्थान में स्थानांतरित होने से पवित्र स्थान अपवित्र हो जाता था। इस कारण
पापों को हटाने के लिए एक विशेष कार्य अनिवार्य था। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि प्रत्येक पवित्र कक्ष के लिए प्रायश्चित किया जाए, जैसा कि वेदी के लिए किया जाता था, ताकि उसे इसराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता से छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र, लेव्य व्यवस्था 16 आयत 19, किया जा सके। वर्ष में एक बार प्रायश्चित के दिन याजक मिलाप वाले तंबू के शुद्धिकरण के लिए सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। यह कार्य परिचर्या का वार्षिक चक्र संपन्न करता था। प्रायश्चित के दिन बकरी के दो बछड़े पवित्र मंडप के द्वार पर लाए जाते थे और उनके लिए चिट्ठियां डाली जाती थीं। एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल बलि का बकरा के लिए, जिसके बकरे के नाम पहली चिट्ठी निकलती थी, उसके लोगों के लिए पाप बलि के रूप में वध किया जाना होता था, और फिर याजक को उसका लहू पर्दे के भीतर लाकर प्रायश्चित के ढक्कन पर छिड़कना होता था, और वो इसराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाला तंबू, जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है, उसके लिए भी वैसा ही करे। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे के सिर पर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ, जो इस काम के लिए तैयार हों, जंगल में भेजकर छुड़वा दें। वो बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा। जब तक बकरे को इस प्रकार भेज नहीं दिया जाता था, तब तक लोग अपने आप को अपने पापों से मुक्त हुए नहीं मानते थे। प्रत्येक मनुष्य को प्रायश्चित के कार्य के दौरान अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाना होता था। सब उद्यम परे रखकर इसराइल की समस्त कलीसिया पूरा दिन आत्मविश्लेषण, उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख संस्कार पूर्वक दीन होकर दिन व्यतीत करना चाहिए। इस वार्षिक भर्म क्रिया के द्वारा लोगों को प्रायश्चित से संबंधित महत्वपूर्ण सत्य सिखाए जाते थे। वर्ष के दौरान दी गई पाप बलियों में पापी के स्थान पर उसका प्रतिनिधि स्वीकार कर लिया जाता था, लेकिन बलि के पशु का लहू पाप के लिए संपूर्ण प्रायश्चित नहीं करता था। वो केवल एक साधन प्रदान करता था, जिसके द्वारा पाप को मिलाप वाले तंबू में स्थानांतरित किया जाता था। लहू की भेंट द्वारा पापी व्यवस्था के प्रभुत्व को स्वीकार करता था, अपने अपराध के दोष का अंगीकार करता था और उसमें अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करता था, जो जगत के पाप को ले जाने वाला था। लेकिन वो व्यवस्था के दंडादेश से पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होता था। प्रायश्चित के दिन महायाजक कलीसिया के लिए भेंट लेकर लहू के साथ सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करके उसे व्यवस्था की पटियाओं के ऊपर प्रायश्चित के ढक्कन पर छिड़क देता था। इस प्रकार व्यवस्था का दावा, जो पापी के प्राण की मांग करता था, संतुष्ट हो जाता था। फिर मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए याजक पापों को अपने ऊपर ले लेता था, और मिलाप के तंबू को छोड़कर इसराइल के दोष का बोझ वो ढोता था। पवित्र मंडप के द्वार पर वो अपने हाथ अजाजेल बलि का पशु के सिर पर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सब पापों को अंगीकार कर उनको बकरे के सिर पर धर देता था। जब उस बकरे को सब अधर्म के कामों से लदे हुए भेज दिया जाता था, तो ऐसा माना जाता था कि उनके पाप उनसे अलग किए गए। ये विधि, जो स्वर्ग में वस्तुओं के प्रतिरूप और उदाहरण इब्रानियों 8 आयत 5 संपन्न की जाती थी, जैसा कि कहा गया है, पृथ्वी पर मिलाप वाला तंबू मूसा द्वारा पर्वत पर दिखाए गए नमूने के अनुसार बनाया गया था। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत था, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते थे उसके दो पवित्र स्थान स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप थे। मसीह, हमारा महान महायाजक, मिलाप वाले तंबू का और सच्चे पवित्र मंडप का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। इब्रानियों 9 आयत 9-23, 8 आयत 2। जैसे कि स्वप्न दर्शन में प्रेरित यहुन्ना को स्वर्ग में परमेश्वर के मंदिर की झलक दिखाई गई और वहां उसने सिंहासन के सामने आग के सात दीपक जलते हुए देखे, उसने देखा, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और उसको बहुत धूप दी गई कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। प्रकाशित वाक्य 4:5-8:51। यहां नबी को स्वर्ग के पवित्र तंबू का प्रथम कक्ष देखने की अनुमति दी गई और वहां उसने आग के साथ दीपक और सोने की वेदी को देखा, जिसके पृथ्वी पर के मिलाप वाले तंबू में स्वर्णिम दीपाधार और धूप की वेदी प्रतीक थे। फिर से परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया। प्रकाशित वाक्य 11:19। और उसने भीतरी पर्दे के अंदर पवित्रों के पवित्र को देखा। यहां उसने अपनी वाचा के संदूक, प्रकाशित वाक्य 11:19 की देखा, जिसका प्रतीक परमेश्वर की व्यवस्था को रखने के लिए मूसा द्वारा बना गया पवित्र संदूक था। मूसा ने पृथ्वी पर मिलाप का तंबू जो आकार उसने देखा था उसके अनुसार बनाया। पौलुस घोषणा करता है कि संपन्न होने पर पवित्र मंडप और उपासना उत्सवों में काम आने वाली हर वस्तु स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप थी। प्रेरितों के काम 7:44, इब्रानियों 9:21-23। और यहुन्ना कहता है कि उसने स्वर्ग में तंबू को देखा, वह पवित्र तंबू जिसमें यीशु हमारे पक्ष में पुरोहिती करता है मूल रूप में है, और मूसा द्वारा निर्मित मिलाप वाला तंबू उसका प्रतिरूप है। वह स्वर्गीय मंदिर, राजाओं के राजा का निवास स्थान, जहां हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने उपस्थित थे, दानियेल 7:10। वह मंदिर जो शाश्वत सिंहासन की महिमा से भरा था, जहां स्वर्गदूत उसके चमकते हुए रक्षक श्रद्धा में अपने मुख को ढांक लेते हैं। कोई भी सांसारिक भवन उसकी महिमा और विशालता का प्रतीक नहीं हो सकता। फिर भी स्वर्गीय मिलाप वाले तंबू और मनुष्य के उद्धार हेतु आगे बढ़ाए जाने वाले कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण सत्य को पृथ्वी पर के मिलाप वाले तंबू और उसकी विधियों द्वारा सिखाया जाना था। अपने आरोहण के पश्चात हमारे उद्धारकर्ता को हमारे महायाजक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ करना था। इब्रानियों 9:24 में पौलुस कहता है, मसीह ने हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थानों में प्रवेश नहीं किया जो सच्चे पवित्र स्थान का प्रतिरूप है, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। जैसे मसीह की परिचर्या में दो महत्वपूर्ण विभाजन होने थे, वह प्रत्येक का समय निर्धारित और स्वर्गीय तंबू में विशिष्ट स्थान होना था, उसी प्रकार प्रतीकात्मक परिचर्या के भी दो भाग थे, दैनिक और वार्षिक धर्मक्रिया, और प्रत्येक को पवित्र मंडप का एक विभाग समर्पित था। जैसे आरोहण के समय मसीह पश्चतापी विश्वासियों के पक्ष में अपने लहू द्वारा विनती करने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट हुआ, इसी प्रकार दैनिक परिचर्या में याजक पापी की ओर से पवित्र स्थान में बलि के पशु का लहू छिड़कता था। मसीह का लहू पश्चतापी पापी को व्यवस्था के दंडादेश से तो मुक्त कराने के लिए था, लेकिन पाप को रद्द कराने के लिए नहीं था। वह अंतिम प्रायश्चित तक पवित्र तंबू में उल्लिखित रहेगा। इसी रीति से पाप बलि का लहू पश्चतापी से पाप को हटा देता था, परंतु वह प्रायश्चित के दिन तक मिलाप वाले तंबू में रहता था।
निर्णायक प्रतिफल के महत्वपूर्ण दिन, जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:12।
फिर मसीह के पश्चतापी लहू की सामर्थ से स्वर्ग की पुस्तकों में से यथार्थ में पश्चतापी लोगों के पाप मिटा दिए जाएंगे। इस प्रकार पवित्र तंबू पाप के अभिलेख से स्वतंत्र या पवित्रकृत हो जाएगा। प्रतिरूप में प्रायश्चित का ये महान कार्य या पापों का मिटाया जाना प्रायश्चित के दिन की धर्म क्रिया द्वारा बताया जाता था। पृथ्वी पर मिलाप का तंबू जो पापों द्वारा दूषित हो जाता था, उसे पाप बलि के लहू के सामर्थ्य से पवित्रकृत किया जाता था। जैसे कि निर्णायक प्रतिफल के समय यथार्थ में पश्चतापी लोगों के पाप स्वर्ग की पुस्तकों से मिटा दिए जाएंगे और कभी भी स्मरण नहीं किए जाएंगे या मन में नहीं आएंगे। इसी प्रकार प्रतिरूप में वे जंगल में लिवा लिए जाते थे और कलीसिया से सर्वदा के लिए अलग कर दिए जाते थे। शैतान पाप को जन्म देने वाला और पाप को प्रत्यक्ष रूप से उकसाने वाला है। जो परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु का कारण बना। इसलिए यह न्यायोचित है कि शैतान निर्णायक दंड को भोगे। मसीह का मनुष्य के उद्धार का व जगत को पवित्रकरण द्वारा पाप रहित करने का कार्य स्वर्गीय तंबू से पापों को हटाकर निर्णायक दंड भुगतने के पात्र शैतान पर धरकर या रखकर समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार प्रतीकात्मक धर्मक्रिया में परिचर्या का वार्षिक चक्र, मिलाप वाले तंबू के पवित्रकरण और अजाजेल बलि का पशु के सिर पर हाथ रखकर पापों के अंगीकरण के साथ समाप्त हो जाता था। इसी प्रकार पवित्र मंडप की परिचर्या में और मंदिर, जिसने बाद में पवित्र मंडप का स्थान लिया, की परिचर्या में लोगों को मसीह की मृत्यु और परिचर्या से संबंधित महत्वपूर्ण सत्य प्रतिदिन सिखाए जाते थे और वर्ष में एक बार उनके ध्यान को शैतान और मसीह के बीच महान संघर्ष की अंतिम घटनाओं व जगत का पाप और पापियों से रहित होने या उसके पवित्रकरण की ओर ले जाया जाता था।